नमस्कार। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय से प्रसारित फेसबुक, यूट्यूब और ब्रह्मा कुमारीज के सोशल मीडिया हैंडल्स पर यह हमारी लाइव प्रस्तुति है। 21 दिवसीय योग चैलेंज हम सभी मिलकर कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में। ब्रह्मा कुमारीज की एक छोटी सी ऑफरिंग ये है कि हम योग को उसके संपूर्ण स्वरूप में समझें और इन 21 दिनों में हम योग के सारे ही बेनिफिट्स अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। योग अनेकों फायदे देता है। उन अनेकों फायदों में से अगर हम ध्यान से देखें तो योग सर्वांगीण विकास की ओर हमें अग्रसर करता है। योग हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी अच्छा करता है। सिर्फ शारीरिक रूप से उन्नति ही नहीं, मगर आध्यात्म के पथ पर भी योग एक उन्नति का साधन बनता है। मुनि पतंजलि ने अष्टांग योग को प्रतिपादित किया है, यानी योग के अष्ट अंग यानी 8 limbs ऑफ योगा के बारे में उन्होंने बातचीत की है। और पिछले कई दिनों से हम भी इसी चर्चा में आप सभी के साथ मिलजुल कर हिस्सा बन रहे हैं कुछ रोचक तथ्यों को जानने के लिए और योग के संपूर्ण स्वरूप को जानकर उसे अपने जीवन में अपनाने के लिए। योग के अनेकों अंगों में से जो हम अभी तक चर्चा कर चुके हैं वो है यम, नियम, आसन और प्राणायाम। तो आज हमारी चर्चा कई दिनों से, कल और परसों से हम प्राणायाम पर चर्चा करने के लिए और प्राणायाम के अभ्यास के लिए भी स्थित होकर बैठे हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में हम थोड़े फिजिकल एस्पेक्ट्स पर काम करते हैं। पहले 10 मिनट हम करते हैं योगासन और प्राणायाम से जुड़ी हुई कुछ विधियां और फिर उसके बाद हम चर्चा के लिए आज चलेंगे सीधे जम्मू, जहां पर योग प्रशिक्षिका और योगा एक्सपर्ट हमारे साथ शीतल भारती जी जुड़ेंगे, जो हमें प्राणायाम के विषय पर हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे और प्राणायाम से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातों पर प्रकाश भी डालेंगे। और कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हम करेंगे राजयोग ध्यान यानी कि मेडिटेशन। तो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम लगभग 30-35 मिनट में कोशिश ये करेंगे कि हम सब कुछ जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसे हम सीखें और प्रैक्टिस करके देखें। तो चलिए, प्रैक्टिस का वक्त हो रहा है तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं प्राणायाम से। और आज प्राणायाम कराने के लिए हमारे साथ हैं योगाचार्य हरीश वैद्य जी, जो सीधे बड़ौदा से जुड़ रहे हैं। चलिए बड़ौदा उनके साथ जुड़ते हैं और करते हैं।
ओम शांति। ओम शांति। वंदे मातरम। आपके मंगल की कामना करता हूं। आज हम उद्गीत प्राणायाम के बारे में समझ लेंगे, उद्गीत प्राणायाम सीख भी लेंगे। बहुत ही आसान है लेकिन बेहतरीन परिणामों की गारंटी है। उद्गीत प्राणायाम भगवत्ता से जुड़ा है। उद्गीत प्राणायाम हमारे आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के साथ जुड़ा है। उद्गीत प्राणायाम हमारी समूची उत्क्रांति से जुड़ा है, हमारे ऊर्ध्वगमन के साथ जुड़ा है, हमारे विकास के साथ जुड़ा है, हमारे बौद्धिक विकास के साथ जुड़ा है, हमारे इंद्रियगत विकास के साथ जुड़ा है। बहुत सारे आयामों से ये जुड़ा है। उद्गीत प्राणायाम ये ऊ से शुरू होता है, ओमकार की जो वैश्विक ध्वनि है, और ओम का उच्चारण करते ही हम यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं। याद रहे कि भगवान ने भी धरती पर आते ही सबसे पहला शब्द जो है वो ओमकार उच्चारण किया था, ओम शब्द की उद्घोषणा की थी। और जब परस्पर हम मिलते हैं तो ओम शांति कहते हैं, क्योंकि ओम विश्व से हमें जोड़ देता है। तो ये तत्काल हमें विश्व से जोड़ने वाली जो क्रिया है वो उद्गीत प्राणायाम है। ये कोई भ्रमणा नहीं है, ये वास्तविकता है। और इसको करने से व्यक्ति का जिसको कहते हैं ना का समुचित विकास हो जाता है। हमारे ब्रेन में ऐसा कहा जाता है, मैंने गिने नहीं है, 30 अरब से ज्यादा न्यूरॉन सेल हैं। वो सभी न्यूरॉन सेल में ऊर्जा आती है, याद शक्ति बढ़ती है। याद रहे हमको जो मस्तिष्क मिला है वही पाणिनि को मिला था, वही पतंजलि को मिला था, और वही न्यूटन को मिला था, वही आदरणीय प्रधानमंत्री को मिला है, वही किसी भिक्षुक को मिला है, और वही विश्व के सभी मनुष्यों को मिला है जिसकी क्षमता एक समान है। लेकिन उद्गीत प्राणायाम करते ही आपकी याद शक्ति, आपकी स्मृति शक्ति बढ़ जाती है। मेरा बिल्कुल अनुभव है, आप आपके घर के छोटे छोटे बच्चों को ये प्राणायाम सिखा दो, आप भी स्पिरिचुअली अगर उन्नति करना चाहते हो, आपके मस्तिष्क के अंदर धर्म का विकास हो, धर्म का जन्म हो, ऐसे रसायन पैदा करना चाहते हो, तो उद्गीत प्राणायाम करें। याद रहे हमारे शरीर के जो 7 चक्र है, मूलाधार से लगाकर सहस्त्रार तक, कि जो शरीर के साथ आत्मा के स्पंदन केंद्र है, स्पर्श केंद्र है, आत्मा शरीर से इस 7 बिंदुओं से जुड़ता है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, ये 7 स्पर्श केंद्र है। उसमें से आज्ञा चक्र सबसे मेन है, सहस्त्रार भी मेन है। आज्ञा हमारी आध्यात्मिकता के साथ जुड़ा है, आज्ञा चक्र हमारे अस्तित्व से जुड़ा है, क्योंकि आत्मा का निवास स्थान यहां पर है। अब हम सीख लेते हैं कैसे करना है, फिर उसके फायदे क्या है वो भी देख लेते हैं। अब बिल्कुल सीधा बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल 90 एंगल रखेंगे, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा करेंगे, जमीन से आपका कोई संपर्क नहीं होगा, या शतरंज बिछाएंगे, या प्लास्टिक की चटाई बिछाएंगे, या लकड़े के पाट पर बैठेंगे, या सोफे पर बैठेंगे, चमड़ा का न होना चाहिए सोफा, चमड़ा पहनेंगे तो भी इसके परिणाम नहीं मिलेंगे। अगर आप ये प्राणायाम करते हैं और आपके शरीर पर कोई घड़ी वगैरह है, बहुत सारे गहने हैं, तो भी ये प्राणायाम का आनंद आपको नहीं मिलेगा, उसके परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि इससे जो सूक्ष्म शक्तियां पैदा होती है, यूनिवर्स से जो हम रिसीव करते हैं, वो सारी शक्तियां ये धातुएं पी जाती हैं। इसमें आपने चश्मा भी नहीं पहनना चाहिए, ये अनुभव के बाद मैं बातें कर रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने 11,000 से ज्यादा इसके लिए वर्कशॉप किए हैं। सीधे बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर देंगे, आंखें बंद करके आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगे, और मैं जैसा बोलता हूं वैसा आप करेंगे। गहरी सांस लेंगे, ओ बार बार इस प्रकार से आप ओमकार का रटन करेंगे। आप 20 सेकंड लंबी प्रश्वास करेंगे, 3 से 4 सेकंड लंबा गहरी सांस भरेंगे और 20 सेकंड कम से कम लंबी प्रश्वास करेंगे। इससे आपकी स्मृति तो बढ़ेगी ही, लेकिन आपके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ेगी, आपकी जो बीज शक्तियां जो है वो ऊर्ध्वगामी होंगी, आपकी जो महत्वपूर्ण शक्ति जो है मूलाधार के पास जो शक्ति है वो ऊर्ध्वगामी होंगी, और आप बेहतरीन सन्यासी सिद्ध हो सकते हैं, आप बेहतरीन गृहस्थी सिद्ध हो सकते हैं, आप एक वरदानी आत्मा बन सकते हो, आपके पास स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत हो सकती है। तो ये उद्गीत प्राणायाम आपको बेहतरीन परिणाम देंगे, और आप इसके अनुभव में डूबिए, ये करके देखिए, और इसके जो रिस्पांस आपको मिलते हैं इसके बारे में अगर आपको कुछ जानना भी है तो आप पूछ सकते हो। और आज के इस संवाद का पूरा श्रेय मैं सर्वेश्वर भगवान के चरणों में अर्पित करता हूं, और जगत जननी प्राणों से भी अधिक प्रिय जिस भूमि पर भगवान ने आना किया है, अवतरण किया है, उस भारत भूमि को प्रणाम करके आज के विषय के समापन की आज्ञा चाहता हूं। वंदे मातरम।
बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से ये प्राणायाम करवाया। और जब मैं प्राणायाम कर रहा था तो मैं भी चश्मा साइड में उतार कर मैं खुद भी ये प्राणायाम कर रहा था। दोस्तों, करने के लिए इतना आसान है और हम सभी कर सकते हैं, और छोटे बच्चे भी जब ये कर सकते हैं, जब उन्होंने कहा, तो हम सबको इसके बेनिफिट्स लेने चाहिए। आशा करते हैं कि आज के प्राणायाम से आपने बेनिफिट्स लिए भी होंगे और आप दूसरों को भी ये बेनिफिट्स देंगे। और हालांकि हमारे पास समय की कमी के कारण हम थोड़े ही मिनट के लिए इसका डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, बट आप सभी बाद में बैठकर भी इस प्राणायाम के लिए समय दें। और ऐसे समय पर जब हम सभी जानते हैं कि प्राणायाम के महत्व को हम सभी समझ रहे हैं, अपने लंग की कैपेसिटी को बेहतर करने के बारे में हम सभी काम कर रहे हैं, तो ऐसे में हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को ये चीज सिखाएं, ताकि हम अपने बॉडी की इम्यूनिटी को अच्छा बनाएं, अपने हेल्थ को अच्छा बनाएं। दोस्तों, अगर आप आज के कार्यक्रम के लिए कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। उन प्रश्नों को आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा और उन प्रश्नों को मैं थोड़ी देर में आज के हमारे एक्सपर्ट से पूछूंगा। आज का विषय प्राणायाम है और प्राणायाम पे आज ये तीसरा और आखिरी दिन होगा जहां पर हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। आज हमारे साथ योगा एक्सपर्ट शीतल भारती जी जुड़ रहे हैं, तो सीधे जम्मू से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों, अभी से आप अपने प्रश्नों को टाइप करना शुरू करें। शीतल जी से हम इससे पहले कि प्रश्नोत्तर करें, उनसे आज के विषय पर, प्राणायाम के विषय पर कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तो चलिए आज के बोध के लिए चलते हैं शीतल जी के पास। नमस्कार शीतल जी, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में।
नमस्कार श्रीनिधि भाई, थैंक यू
जी। बहुत खुशी हो रही है कि आपसे हम ऐसे रूबरू मिल रहे हैं और हमारे बहुत सारे दोस्त बहुत सारे प्रश्न भी पूछना चाहते हैं। इससे पहले कि हम प्रश्नोत्तरी पे जाएं, दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब या फेसबुक पर, जहां पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वहां पर आप अपने प्रश्न लिखकर डाल सकते हैं। उन प्रश्नों को मैं शीतल जी से पूछूंगा थोड़ी देर में। तो शीतल जी, आपसे पहले हम आज के कार्यक्रम की बातचीत के विषय के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। तो आज जब प्राणायाम के विषय पर हमारी आखिरी चर्चा है, तो इसमें आप ये बताएं कि प्राणायाम करते समय पर किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन प्राणायाम कर सकता है, क्या एज ग्रुप होना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, इन सब चीजों पर आप जानकारी दें।
जरूर। तो आज हम सीखेंगे प्राणायाम के टिप्स एंड केयर्स, कि हमें क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है प्राणायाम को, कब करना है, कैसे करना है, कितने समय करना है। आज हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा रिकैप करते हैं कल हमने जो सीखा था। आपको पता होगा कि जैसे प्राणायाम करने से हमारी जो प्राण शक्ति है वो हमारी एनर्जी चैनल्स में, हमारी नाड़ीज में फ्लो करती है, जिसके कारण जो भी ब्लॉकेजेस होती हैं वो रिमूव होती है, और साथ साथ में हमारी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो भी बढ़ती है। तो इसी के साथ बात करते हुए एक थोड़ा सा और हम इस फिजिकल लेवल पे आ जाएंगे। गहराई में हमने काफी चर्चा कर ली है, आज हम थोड़ा फिजिकल एस्पेक्ट्स के रूप में इसको देखेंगे। तो जैसे आपको पता ही है कि हमारी जो ब्रेथ है, जो ब्रीदिंग सिस्टम है हमारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इट वर्क्स वॉलेंट्री, मतलब वो अनकॉन्शियसली होता है, हमें ब्रीदिंग करनी नहीं पड़ती है, वो अपने आप होती है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम कॉन्शियसली कंट्रोल करते हैं अपनी ब्रेथ को, और उसके बाद में क्या होता है, जब हम कॉन्शियसली कंट्रोल कर रहे हैं अपनी ब्रीदिंग को, तो हमारा जो मन है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, और बहुत सटल लेवल पे हमारी एनर्जी चैनल्स में चेंजेस आती हैं, जो हमारा प्राणमय कोशा है जिसकी हमने कल बात की थी, उसके अंदर चेंजेस आती हैं। तो जब हम कॉन्शियसली कंट्रोल करते हैं अपनी ब्रेथ को, तब हम जिस भी तरीके का चेंज चाहते हैं वो चेंज हम ला सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्राणायाम कर रहे हैं। सो अब प्राणायाम के आज हम फोर एस्पेक्ट्स के बारे में हल्का सा ऊपर ऊपर से जानने की कोशिश करेंगे। सो प्राणायाम के तीन एस्पेक्ट्स होते हैं, आप स्टेजेस कह सकते हो उनको। पहला होता है पूरका, इनहेलेशन। तो इनहेलेशन तो हम सब जानते ही हैं, काफी सरल शब्द है। नॉर्मल जब हम इनहेल करते हैं, श्वास अंदर की तरफ लेते हैं, तो उसको पूरका कहा जाता है। अब इनहेल तो हर कोई कर रहा है, अब प्राणायामा में इनहेलेशन में हमें इस चीज का ध्यान रखना जरूरी होता है कि हम डीप इनहेलेशन करें। यूजुअली हमारी ब्रेथ शॉर्ट होती है, जैसे हमने पहले भी बात करी थी इस बारे में। अब हमें प्राणायामा में सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि आपकी जो श्वास लेने की स्पीड है उसको आप थोड़ा स्लो करें और उसको थोड़ा लंबा करें, उसको डीप करें। ये एक जरूरी चीज है जिस पे हमें ध्यान देना है। और एक्सहेलेशन, रेचिका, रेचिका में हमें उसको लॉन्ग करना है, एक्सहेलेशन को हमेशा लंबा करना है एज कम्पेयर टू इनहेलेशन के। तो यहाँ पे अगर बात की जाए प्राणायामा की बिगिनिंग की, तो सबसे पहले हमें फोकस करना है इनहेलेशन पे और एक्सहेलेशन पे। इसका अर्थ है कि हमें कॉन्शियसली विद द अवेयरनेस ब्रीदिंग करनी है। आज हम श्वास ले रहे हैं बट वो वॉलंटरी हो रही है, हम उसमें कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे, हम अपना अवेयरनेस, अपना ध्यान अपनी ब्रेथ के पास नहीं लेकर जाते हैं। हम डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं और श्वास जो है वो अपने आप चलती है। अब हम प्राणायामा जब करेंगे तो हमें कॉन्शियसली ब्रीदिंग को अवेयर होकर के हमें ब्रीथ करना है। आपकी पूरी अवेयरनेस आपकी ब्रेथ के ऊपर होनी चाहिए कि श्वास कैसे अंदर जाती है, कैसे श्वास बाहर आ रही है, आपको उसके ऊपर कंट्रोल करना है। ब्रेथ शैलो होने के कारण हमारी ब्रेथ शॉर्ट है, तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के ऊपर काम करने का अर्थ है कि हमें उनको लॉन्ग करना है। हमें डीप इनहेलेशन ज्यादा, जितना लंबा हो सके हम उन्हें लंबा करें, और जितना डीपली कंप्लीटली एक्सहेल कर सके उतना लंबा हम उसे एक्सहेल करें। ये हो गई पूरका और रेचिका। अब बात करते हैं कुंभका की। कुंभका होता है रिटेंशन ऑफ ब्रेथ, जो प्राणायामा का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिटेंशन, कुंभका। अब कुंभका भी दो प्रकार का होता है, एक होता है अंतर कुंभका, एक होता है बाह्य कुंभका। अंतर कुंभका में हम क्या करते हैं, जब हमने इनहेल कर लिया उसके बाद हम ब्रेथ को होल्ड कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं, अर्थात हम एक्सहेल नहीं करते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए हम होल्ड करते हैं और उसके बाद में हम एक्सहेल करते हैं, ये होता है अंतर कुंभका। उसके बाद होता है बाह्य कुंभका, मतलब आप एक्सहेल कर देते हैं पूरा और उसके बाद में आप ना तो इनहेल करते हैं कुछ समय के लिए, ना ही एक्सहेल करते हैं, आप वहीं पे ही होल्ड करते हैं, अपनी ब्रेथ को रिटेन करते हैं। तो ये चार इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं प्राणायामा के। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिटेंशन ऑफ ब्रेथ, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं वो ब्रेथ को रिटेन करने से आते हैं। परंतु ब्रेथ रिटेंशन में आपको जाने के लिए इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। पहले हमें अपनी बॉडी को, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को तैयार करना है होल्डिंग के लिए। अगर आपका कंट्रोल नहीं है इतना ज्यादा, आप ज्यादा इनहेल नहीं कर पाते हैं ज्यादा देर तक, और एक्सहेल भी आप बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो आपको थोड़े समय के लिए शुरुआत में आपको सिर्फ उसको लॉन्ग और डीप करने की प्रैक्टिस करनी है। जब आपका पूरा कंट्रोल होगा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के ऊपर, उसके बाद आप कुंभका को अटेम्प्ट करेंगे। फिर आप, हमारे बहुत सारे प्राणायामास हैं जैसे अनुलोम विलोम भी हो गया, उसमें एक होता है नॉर्मल, जिस तरीके से हम करते हैं श्वास लेते हैं एक नासिका से, दूसरी से छोड़ते हैं, दूसरी से लेते हैं और फिर पहली से छोड़ते हैं। तो ये हो गया नॉर्मल विदाउट रिटेंशन ऑफ द ब्रेथ। अब जब हम कुंभका अप्लाई करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, इनहेल करने के बाद हम ब्रेथ को रिटेन करते हैं। अगर हमने 5 सेकंड श्वास लेने में लगाए हैं तो 5 सेकंड हम होल्ड करते हैं और 5 सेकंड के बाद श्वास को बाहर छोड़ते हैं। ये हो गया कुंभका के साथ। बट ये आपको तभी करना है जब आपका पूरा कंट्रोल है आपकी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे, उसके बाद हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद एक और टर्म आती है केवल कुंभका। केवल कुंभका होती है अनकॉन्शियस रिटेंशन ऑफ ब्रेथ, मतलब जहां पे आपको खुद कॉन्शियसली ब्रेथ को रोकना नहीं पड़ता, वो अपने आप होती है। तो केवल कुंभका तब आता है जब आप बहुत ज्यादा किसी प्राणायाम को बहुत लंबे समय के लिए करते हो और ड्यूरेशन लंबा होता है, तब आप केवल कुंभका का अनुभव कर सकते हैं। तो जब हम कपालभाति का प्रयास करते हैं, कपालभाति का प्रैक्टिस करते हैं, उस टाइम अगर आप कॉन्टिन्यूसली 5 मिनट्स तक आपने कपालभाति की है उसके बाद अगर आप अपने पूरे ध्यान को अपने श्वासों पे ले जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी श्वास रुकी हुई है. देयर इज अ ऑटोमेटिक रिटेंशन ऑफ ब्रेथ. आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, वो ऑटोमेटिकली आपकी ब्रेथ जो है वहां पे खुद रुकी है. ना आप श्वास ले रहे हैं उस क्षण में और ना आप श्वास छोड़ रहे हैं. वो होता है केवल कुंभका. केवल कुंभका का अनुभव और इसका यूज जो है जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं तब वहां पे उन प्राणायामास में इनका उपयोग किया जाता है. क्योंकि वहां पे जब आप केवल कुंभका की स्थिति में होते हैं तो आपका मन एकदम शांत होता है. वह ट्रैंक्विलिटी की स्टेट होती है जो कि ध्यान में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. तो शरीर के माध्यम से हम मन को कंट्रोल करके ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में जाते हैं. तो वो ऑटोमेटिकली होती है. अगर आप कपालभाति का रेगुलर प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आपने इस चीज को महसूस किया होगा. अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी कपालभाति करें तो आप इसको जरूर नोटिस करें. कपालभाति खत्म करने के बाद एक दो सेकंड्स का वो ड्यूरेशन होता है जहां पे बॉडी ना इनहेल करती है ना एक्सहेल करती है. तो उस टाइम पे जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो बढ़ती है. जो हमारी सेल्फ रियलाइजेशन होने का जो समय होता है वही होता है जहां पे आपकी जो इनर हायर कॉन्शियसनेस है वो जागृत होती है. तो ये होगी फोर एस्पेक्ट्स की बात. अब हम बात करेंगे कि किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है प्राणायाम करते वक्त. सबसे पहले प्राणायामा हमेशा आप नाक से ही सांस लेंगे. प्राणायामा के लिए आपको कुछ ऐसे प्राणायामास हैं, शीतली और शीतकारी प्राणायामा और सिदंता. ये तीन ऐसे प्राणायामा हैं जहां पे हम मुंह से सांस लेंगे और बाकी जितने भी प्राणायामास हैं वो सब में हम श्वास नाक से ही लेंगे. तो इस चीज का हमें पहला ध्यान रखना है. दूसरा ध्यान हमें ये रखना है प्राणायामा करने से पहले अगर आप आसना की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका प्राणायामा का अनुभव बहुत बेहतरीन हो जाएगा. अगर आप आसनास नहीं कर रहे हैं तो भी आप इसको करें, परंतु अगर आप आसनास करते हैं उसके बाद में आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको और ज्यादा गहन अनुभूति होगी और ज्यादा आप आंतरिक यात्रा में जा सकते हैं. दूसरी बात ये होगी. तीसरी बात होगी प्राणायामा करने से पहले अगर आप आसनास का अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो आप नहा धोकर बैठेंगे प्राणायामा के लिए. और अगर आप ने नहा लिया है या वो नहाने का समय नहीं है आपका तो उस समय पे आप क्या करेंगे, आप हाथ मुंह और पैर अच्छे से धोकर फिर आप बैठकर इसका अभ्यास करेंगे. नेक्स्ट हो गया कितना किस समय पे करेंगे. समय सबसे बेस्ट बोला जाता है मॉर्निंग का समय. मॉर्निंग में आप अभ्यास करें खुली हवा में, बंद कमरे में अभ्यास ना करें. अंटिल अनलेस की कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं, नहीं तो आप अपने छत पे जाके बाहर खुली हवा में कहीं पर भी बैठ के इसका अभ्यास करें. मॉर्निंग के समय में सबसे बेस्ट टाइम है क्योंकि आपकी बॉडी उस टाइम बिल्कुल शांत होती है. माइंड इज यू नो मन में बहुत कम इंप्रेशंस होते हैं. माइंड इज फ्री फ्रॉम ऑल द न्यू इम्प्रेशंस. मन बहुत शांत होता है तो उसका प्रभाव आप ज्यादा महसूस करेंगे उस वक्त. और अगर किसी वजह से सुबह आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप शाम को इसका अभ्यास करें. शाम को सूर्य उदय होने के बाद में आप प्राणायामा का अभ्यास कर सकते हैं. आपका पेट खाली होना चाहिए. आपको 4 to 5 hours का गैप रखना है अगर आप इवनिंग में कर रहे हैं प्राणायाम. अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हैं तो आपका पेट खाली हो सकता है, खाली होगा और आप पानी वगैरह पी सकते हैं. दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. और सबसे बड़ी बात, अगर आप प्राणायामा कोई ऐसा प्राणायामा हायर लेवल का कर रहे हैं, आपको अंडर द गाइडेंस ऑफ सम योगा ट्रेनर और योगा इंस्ट्रक्टर ही करना है. क्योंकि आपको कहीं टीवी से देख के या आपको प्रॉपर, अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं या आप अभी प्रोग्राम ही देख रहे हैं तो आप अच्छे से सुनिए, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनिए और फिर करिए. क्योंकि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज नॉट गुड. तो हमेशा अच्छे से प्राणायाम को सीखेंगे और आपको पूरी अच्छे से टेक्निक आती होगी फिर आप करेंगे. क्योंकि प्राणायामा अगर सही से ना किया जाए तो उसके कुछ डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलते हैं. तो यही मेरी गुजारिश है, जब भी आप प्राणायामा करें अच्छे से उसको सीखें और सही तरीके से करें. और अगर आपको बहुत ज्यादा कोई क्रॉनिक डिजीज है, हार्ट की डिजीज या बीपी की डिजीज है, तो आप कुछ प्राणायामास को अवॉइड करें, और अगर आप कुछ प्राणायामास करते हैं तो आप किसी भी योगा टीचर के उपस्थिति में ही इसको प्रैक्टिस करें, खुद से देख के ना करें, कंसल्ट कर लें किसी को जिनको इस बारे में थोड़ा नॉलेज है, वो आपको गाइड कर सकते हैं, फिर आप इसका प्रैक्टिस करें। तो ये थी कुछ टिप्स, अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा कर सकते हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी, मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे दोस्तों के मन में प्रश्न भी होंगे, बहुत सारी चीजों पूछना भी चाहते होंगे, प्रश्नों की तरफ हम रुख करते हैं। मैं समझता हूँ एक पहला ही प्रश्न मैं पूछ लेना चाहता हूँ जो कई दिनों से हम सुन रहे थे। कोविड की वजह से बहुत सारे लोग ये देख रहे हैं कि जिनको कोविड एक राउंड हो गया है तो डॉक्टर्स ने बहुत सारी जगह ये एडवाइस किया है कि लंग कैपेसिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने चाहिए, और इसलिए बहुत सारे लोग प्राणायाम सीखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। तो ऐसे में जिनको कोविड एक बार हो गया है, बहुत सारे हमारे साथी इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे, तो ऐसे में आप उन साथियों को क्या गाइड करना चाहेंगी कि उन्हें क्या करना चाहिए, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए?
जी सो जो भी कोविड से रिकवर हुए हैं अभी, उनके लिए सबसे बेस्ट है स्टार्ट करें आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग से। हमने इसकी चर्चा परसों भी की थी, कल भी की थी। आपको नॉर्मल पेट के ऊपर अपने राइट हैंड को रखना है, लेफ्ट हैंड को आप अपने चेस्ट पे रख लेंगे, इनहेल करेंगे तो पेट बाहर की तरफ खुलेगा और एक्सहेल करेंगे तो पेट अंदर की तरफ जाएगा। इनहेल करेंगे पेट बाहर की तरफ, एक्सहेल करेंगे तो पूरे पेट को खाली करना है। तो ये हुई एब्डोमिनल ब्रीदिंग, आप ये ब्रीदिंग करें, इससे स्टार्ट करें। इसके बाद में आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, वो रिवाइटलाइजिंग प्राणायामा भी है और बैलेंसिंग प्राणायामा भी है, तो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। तो अनुलोम विलोम हमने कल सीखा था, वो आप प्रैक्टिस करें, ये दो प्राणायामा आप करें। और अगर आपको कोई ज्यादा समस्या नहीं है बीपी की और उसकी, तो आप कपालभाति और भस्त्रिका को भी अपनी डेली रूटीन में इन्वॉल्व करें, आपको काफी फायदा।
जी एक और हमारे साथी हैं कि कृष्णा जी ये पूछते हैं, यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं प्रोग्राम को, और वो पूछते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ मैट इज सजेस्टेड इन उद्गीत। उद्गीत प्राणायाम आज हम सीख रहे थे, हरीश वैद्य जी हमें बता रहे थे उद्गीत प्राणायाम के बारे में, तो ऐसे में जो योगा मैट या जिस पर हमें बैठकर करना है वो कैसा होना चाहिए? वुलन का होना चाहिए, प्लास्टिक होना चाहिए, कोई कॉटन का होना चाहिए, या प्लांट बेस्ड कुछ होना चाहिए, कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए क्या, ऐसा पूछते हैं।
वैसे तो कोई स्पेसिफिक यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इसी में करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, परंतु अगर आप स्पेसिफिकली आप इको फ्रेंडली की तरफ ज्यादा हैं, आप चाहते हैं कि आप नेचर को साथ में लेके चले, तो कोशिश करें कि प्लास्टिक चीजों का आप उपयोग ना करके आप नेचुरल जो भी मैट्स मिलते हैं कॉटन के ले सकते हैं या प्लांट बेस्ड, बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स के मैट मिल सकते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। बाकी आप बोलो कि प्राणायामा में मैट का कोई इफेक्ट होगा तो वो नहीं होगा, बाकी आप अपनी मर्जी से इको फ्रेंडली की तरफ जा सकते हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा, मैं समझता हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। संदीप जाधव हमारे साथ फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, बैक साइड में रीढ़ की हड्डी में बहुत पेन होता है, इसे ठीक करने के लिए कौन सा प्राणायाम करें, ऐसा प्रश्न पूछते हैं संदीप
जी। संदीप जी को प्राणायामा तो मैं बताऊंगी कौन सा करना है, कैसे करना है, उसके साथ साथ आप एक बार आसनास को भी थोड़ा अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फिजिकली अगर आपको तकलीफ हो रही है बैक की समस्या तो आसनास आर द बेस्ट फॉर बैक पेन। तो आप आसनास कर सकते हैं, आप आसनास में शुरुआत करें बहुत बेसिक शशांक आसन में बैठने की, वज्रासन में बैठ के आप अपने हाथों को ऊपर उठा के आगे स्ट्रेच करके अपने फोरहेड को आप फ्लोर पे टच करेंगे, तो ये है शशांक आसन। इसमें आप अपने हाथों को जितना हो सके आगे एक्सटेंड करें और वहां पे होल्ड करें, वहां पे आप 20 से लेके 30 या 40 ब्रेथ्स तक वहीं पे ही होल्ड करेंगे। आप यूजुअली बैक पेन का रीजन क्या होता है कि हमारी जो स्पाइन है वो बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाती है ड्यू टू ना लॉन्ग सिटिंग. हमारा इस तरह का काम है अगर ऑफिस में बैठ के करने वाला, या हम साथ साथ 8-8 घंटे लगातार बैठते हैं चेयर पे या लैपटॉप के सामने, तो बैक पेन की समस्या काफी लोग आजकल फेस करते हैं. तो आप एक तो शशांक आसन करें और उसके बाद आप हिप रेजिंग कर सकते हैं बैक पे लेट के, दोनों हाथों को अपनी हिप्स के साइड पे रख के नीज को बेंड करके आप हिप को लिफ्ट कर सकते हैं. इनहलेशन के साथ ऊपर करेंगे, एक्सहलेशन के साथ नीचे करेंगे. इसको आप 10-10 के 2-3 सेट्स आप करें रोज, आपको फायदा होगा. और प्राणायामा के लिए आपको बैक पेन है तो जाहिर है कि आप बैठ के ज्यादा देर प्राणायाम नहीं कर पाएंगे. आप लेट कर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे. आप लेट के दोनों उंगलियों को इंटरलॉक करके हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर लेंगे और दोनों पैरों को आगे सीधा रख के स्ट्रेच करके टोस को आगे पॉइंट करके एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे. बहुत इफेक्टिव होती है ये बैक पेन के लिए. आपको अपर बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, लोअर बॉडी को अपने टोज से और अपनी टांगों से नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है. इससे क्या होता है कि आपकी पूरी स्पाइन को एक्सटेंशन मिलेगी, जिसकी वजह से जहां भी कोई भी पेन है या कुछ भी ब्लॉकेज हुई है वो काफी अच्छी होगी. और आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जो मैंने कहा गहरी श्वास लेनी है, पेट बाहर की तरफ फुलाना है और पेट को अंदर की तरफ, पूरा आपको अवेयरनेस के साथ इसको करना है. ये आप 30-50 ब्रेथ्स करिए. और जो दो आसनास मैंने बताए इन दोनों को आप अगर रेगुलर बेसिस पे करना शुरू करेंगे तो आपको एक हफ्ते में ही काफी ज्यादा रिलीफ फील होगा.
बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, के प्रश्नों का उत्तर मिल गया है ऐसा मैं समझता हूँ. विनय हमारे साथ एक और दोस्त हैं. विनय हमारे साथ यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं प्रोग्राम को. अगर किसी को लिवर डिसऑर्डर है या डाइजेस्टिव इश्यूज हैं तो ऐसे में उनके लिए क्या प्राणायाम सजेस्ट करेंगे, ऐसा विनय पूछते हैं.
जी, सो लिवर और डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी समस्या अगर हो तो सबसे बेस्ट प्राणायाम कपालभाति को बोला जाता है. तो आप कपालभाति का रेगुलर प्रैक्टिस करें. आप 3-5 सेट्स तक कर सकते हैं. ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि आप एक ब्रेथ में कितने ज्यादा बार एक्सहेल कर रहे हैं. आपको वो काउंट करके मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ. एक बार जब हम इनहेल करते हैं उसके बाद हम जब कॉन्टिन्यूसली एक्सहेल करते हैं दैट शुड गो अप टू 125. बट ऑब्वियसली अगर आपने प्राणायाम पहले नहीं किया है तो आप 30-40 ब्रेथ्स के बाद थक जाएंगे. तो इट्स ओके, आप 30 ब्रेथ से शुरू करें, 3 सेट से शुरू करें. वो करेंगे हमारे कपालभाति से क्या होता है, हमारी जो भी एब्डोमिनल मसल्स हैं उनकी बहुत अच्छी मसाज होती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक होता है और लीवर के ऊपर भी काफी इफेक्ट पड़ता है. तो आप ये करें, भस्त्रिका भी करें. भस्त्रिका में भी हम फोर्सफुली मसाज करते हैं, पेट की मसाज होती है फोर्सफुल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से. ये दोनों प्राणायाम आप करें.
बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है ऐसी मैं कामना करता हूँ. वर्णिका जी हमारे साथ हैं. वर्णिका फेसबुक पे प्रोग्राम को लाइव देख रही हैं. वो कहते हैं कि सीजनल एनर्जीज जैसी होती हैं, जैसे मौसम जैसे बदलता है तो कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, तो ऐसे में आप हमें कुछ गाइड कीजिए कि हमें क्या ध्यान रखना चाहिए.
एलर्जीज एक ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते. इसके लिए आपको थोड़ी सावधानियां बरतनी होती हैं. जब वैसा मौसम आता है, अगर आपको पता है कि आपको किसी स्पेसिफिक चीज से एलर्जी है, उस वक्त आप उस चीज को अवॉइड करें सबसे पहले. और दूसरी बात है कि सारी एलर्जी सबसे पहले ये चीज जानना जरूरी है कि आपको किस प्रकार की एलर्जी होती है, स्किन की होती है, आपको नोज में एलर्जी होती है या कहाँ पे वो एलर्जी रिफ्लेक्ट होती है, ये जानना जरूरी है. और दूसरा है कि अगर आपको, मैं समझती हूँ कि ज्यादा लोगों को आजकल नेजल एलर्जी ज्यादा होती है अगर वो सीजन से रिलेटेड है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप जलनीति का अभ्यास कर सकते हैं. जलनीति आप किसी भी योगा प्रैक्टिशनर से मिल सकते हैं, उनसे आप जलनीति सीख सकते हैं. जल नीति जो है हमारी नेसल की जो इनर लाइनिंग है उसको क्लीन करती है, डिसेंसिटाइज करती है, जिससे यूजुअली क्या होता है, बहुत सेंसिटिव होती है, जिन लोगों को एलर्जीज होती है उनकी नोज की इनर लाइनिंग बहुत सेंसिटिव होती है, तो हम उसको जब डिसेंसिटाइज करते रहते हैं तो वो रेडी हो जाती है बाहर से जो भी तत्व आते हैं उनके साथ डील करने के लिए। तो आप जल नीति करें, आपको काफी उसकी मदद मिलेगी, और प्राणायाम अनुलोम विलोम करें, वो भी अच्छा रहेगा
जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ हमारे पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं और समय हमारे पास कम ही होता है दोस्तों, क्योंकि हमने कार्यक्रम को ही सोचा है कि हम कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स दे सकें, और ऐसे में फिर भी हम समय की सीमा को दरकिनार करते हुए आपके प्रश्नों के उत्तर को कभी कभार ज्यादा प्रश्न भी ले लेते हैं, और हमारे एक्सपर्ट्स इस बात का बुरा भी नहीं मानते और वो हमारे साथ बड़ी खुशी से इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। मगर आज हमारे साथ शीतल जी पिछले 3 दिन से जुड़े थे और उन्होंने बहुत अच्छे से हमें प्राणायाम के थियोरी के बारे में समझाया, उसके बारे में हमें अवगत कराया, उनके डिटेल डेप्थ के बारे में, और हमें जानकारियां भी दी और हमारे प्रश्नों के भी उत्तर दिए। तो शीतल जी, आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।
धन्यवाद
दोस्तों। अब वक्त हो रहा है कि अब संपूर्ण योग के कार्यक्रम में हम प्रैक्टिस करें मेडिटेशन का, यानी राजयोग ध्यान का। और जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को शांत करते हैं और इस योग से हम पूरे बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। तो चलिए, अगर आप पहली बार भी जुड़ रहे हैं, अगर आपने कभी मेडिटेशन नहीं किया है तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक गाइडेड मेडिटेशन है, तो हम सभी लोग मिलकर इस मेडिटेशन को करेंगे। और आज हमारे साथ मेडिटेशन करने आने के लिए राजयोगिनी शिविका दीदी जी जुड़ रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी इसके मुख्यालय शांतिवन परिसर से। सीधे ही जुड़ते हैं उनसे और अगले 5 मिनट के लिए कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में करते हैं राजयोग ध्यान यानी कि मेडिटेशन।
ओम शांति। सबसे पहले अपना सारा फोकस भ्रगुटि के मध्य में लेकर के जाए, एकदम रिलैक्स होकर के बैठे। आप चाहे तो आंखें बंद भी कर सकते हैं, आंखें खोल भी सकते हैं। हम सबसे पहले उस परम शक्ति का आवाहन करेंगे जो हमारे पिता है, जो स्वयं दाता है, जिनसे हमें सब कुछ प्राप्त है। हमारे प्यारे पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, शिव भोलानाथ, ज्योति बिंदु, निराकार, जो सदा दाता बनकर हमें देते रहते हैं, हमें श्रेष्ठ शिक्षाएं देते हैं, श्रेष्ठ मार्ग दिखाते हैं, मैं उनकी संतान हूं, मास्टर दाता हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य भी, देवता बनना अर्थात देना, खुशी देना, प्यार देना, शक्तियां देना है। दूसरे को उठाना, दूसरों की गलतियों पे उन्हें क्षमादान देना, मैं आत्मा स्वयं परमात्मा से शक्तियां लेकर वरदान प्राप्त करकर सारे विश्व की आत्माओं को अनेक शक्तियां और वरदानों का दान दे रही हूं। किसी के जीवन में कोई कमी ना रहे, हम भरपूर हो जाएं, आत्मा सर्व गुणों से संपन्न हो जाए, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, ऐसी दुआओं का दान सारे विश्व के लिए कर रही हूं। असीमित ऊर्जा, असीमित शक्ति, असीमित आनंद मुझे महसूस हो रहा है। लेने से ज्यादा देने में जो खुशी है, जो आनंद है, उसका कोई मुकाबला नहीं। स्वयं परमात्मा द्वारा। मुझे ये दिव्य कार्य सौंपा गया है। मेरा लक्ष्य ही है सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना। सभी के जीवन से दुखों को भगाना। ये अनमोल सौगात जो परमात्मा से मुझे प्राप्त हुई है, ऐसी खुशी की और प्यार की सौगात मैं हर आत्मा को दे रही हूं। परमात्मा वाइब्रेशंस चारों तरफ हर आत्मा तक पहुंच रहे हैं। सभी के जीवन में फिर से उमंग उत्साह और एक उम्मीद लौट आई है। आगे बढ़ने की और कभी हार ना मानने की। हम सभी कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान का हाथ हमारे सर पर है। और स्वयं भाग्य विधाता दाता बनकर हमको देने के लिए आप पहुंचे। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद शिविका दीदी जी का, जो ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय परिसर शांतिवन से हमारे साथ जुड़े और उन्होंने हमें मेडिटेशन की बहुत ही सुंदर अनुभूति कराई। और मैं दोस्तों यहाँ बैठकर भी उस मेडिटेशन को एक्सपीरियंस कर रहा था। तो मैं आशा करता हूं आपके लिए भी ये इतना ही सुंदर एक्सपीरियंस रहा होगा। तो कल फिर से हम संपूर्ण योग के 21 दिवसीय योगा चैलेंज में आपसे जुड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यह कार्यक्रम पूरा होगा, बट हमारे पास चंद दिन और हैं, तो आइए योग को उसके सही स्वरूप में जानें, उसके बेनिफिट्स को अपने लाइफ में अप्लाई करें और दूसरों को भी योग का ये प्रकाश फैलाएं। तो ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू से ये आपके लिए विशेष लाइव प्रस्तुति थी। और अगर आपको कुछ भी फीडबैक देना हो, कुछ सजेशन देना हो, कोई भी आप राय देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल हमें दे सकते हैं। बेझिझक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक्स को लिखिए, आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है ये भी बताइए, ताकि हम दूसरों तक भी ये कार्यक्रम पहुंचा सके। अगर आप कुछ प्रश्न भी पूछना चाहते हैं कल के कार्यक्रम के लिए, तो भी आप एडवांस में भी प्रश्न कमेंट्स में डाल सकते हैं, उन प्रश्नों को हम जरूर कल के कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर आपसे होगी मुलाकात, सेम टाइम यानी शाम के 6 बजे हम फिर संपूर्ण योग के कार्यक्रम को लेकर आएंगे। तो कल जुड़ना न भूलें, आप सभी अपना रखिए बेहतर ख्याल, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।